वंदे सच्चिदानंदम वंदे सच्चिदानंदम वंदे भोगिलांचित योगिवांचित चरम पदम वंदे वंदे।
यूहन्ना ने लोगों से कहा कि वे ईश्वर के प्रति वफादार और ईमानदार रहकर अनंत जीवन पाना चाहते हैं या फिर बुराई तथा दुष्कर्म अपनाकर मृत्यु का आलिंगन करना चाहते हैं। यूहन्ना ने यह कहते हुए ईसा की सर्वोच्चता प्रकट की कि किसी परिवार के बारे में सही जानकारी उस घर का ही कोई सदस्य दे सकता है। किसी शहर के बारे में कोई व्यक्ति तभी जानकारी दे सकता है जब वो उस शहर हो आया हो। ठीक उसी तरह ईश्वर के बारे में जानकारी उनका पुत्र ही दे सकता है, क्योंकि मात्र ईसा ही ईश्वर को जानते हैं। उधर ईसा यरूशलेम पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में व्यापारियों को अपना धंधा चलाते देखा।
ये सब क्या है? मेरे पिता के घर में पशु पक्षी, हटाओ इन्हें यहाँ से। मेरे पिता के घर को बाजार न बनाओ। पिता का घर प्रार्थना का घर है, लुटेरों का अड्डा नहीं।
ईसा की नाराजगी का कारण यही था कि व्यापार चलाने के कारण ये लोग किसी को शांति से प्रार्थना का अवसर नहीं देते। ये व्यापारी वे लोग हैं जो ईश्वर के घर में आम लोगों को ईश्वर से जुड़ने में बाधा ही नहीं खड़ी करते, वरन उसे असंभव भी बना देते हैं। पशुओं की आवाजें, शोरगुल उन मानवीय बुराइयों के समान हैं, जिनकी चीख पुकार में मनुष्य अक्सर ईश्वर की आवाज सुनने से इनकार कर देता है। यहूदियों ने जब इस तरह ईसा को अपने पिता का घर कहते सुना तो
आपको ऐसा करने का अधिकार किसने दिया है? क्या आप हमें कोई चमत्कार दिखा सकते हैं?
इस मंदिर को ढहा दो, मैं इसे 3 दिनों के भीतर खड़ा कर दूंगा।
क्या, 3 दिन के भीतर? इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे हैं और आप इसे 3 दिन के भीतर खड़ा कर देंगे?
अक्सर लोग ईसा की बातें समझ नहीं पाते। ईसा 3 दिन के भीतर अपने शरीर के मंदिर को खड़े किए जाने की बात कह रहे थे। वे जानते थे कि लोग पाप कर्म में इतने लिप्त हैं कि वे ईश पुत्र को पहचान नहीं पा रहे हैं। उनके चमत्कार भी उनकी आंखें नहीं खोलेंगे, न ही उनके कठोर हृदय पिघलेंगे। ईसा इनका स्वभाव जानते थे, इसलिए उनसे सीधी बात कहते थे। इतना ही नहीं, बड़े अधिकार के साथ वे लोगों के पाप क्षमा भी करते थे। धर्मियों को सही राह दिखाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन पापियों को जरूर सन्मार्ग दिखाने की आवश्यकता होती है, और इसलिए ईश्वर के पुत्र ईसा ने मानव जन्म लिया था ताकि पापियों का उद्धार कर सके। तभी तो ईसा पूरे अधिकार के साथ कहते थे, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। फरीसी व संहिता का पालन करवाने वाले गुरु ये देखकर चकित थे कि ये मानव है कौन, जिसने न तो कोई शिक्षा हासिल की है, न ही ये नबी है, इतने अधिकार और सामर्थ्य से उपदेश देता वो ईश्वर के राज्य के बारे में बात करता है। जब वे कुछ न कर सके तो उन्होंने ईसा का विरोध तथा उनकी आलोचना करनी शुरू कर दी। निकोदेमुस नामक एक फरीसी यहूदियों की महासभा का सदस्य था। वो ईसा के पास आया और,
गुरुवर, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उनके साथ ना हो।
मैं आपसे ये कहता हूँ, जब तक कोई दोबारा जन्म न ले तब तक वो स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता।
मनुष्य बूढ़ा हो जाने पर दोबारा जन्म कैसे ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश का जन्म ले सकता है?
मैं आपसे ये कहता हूँ, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म न ले तब तक वो ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो देह से उत्पन्न होता है वो देह है, और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वो आत्मा है। आश्चर्य न कीजिए कि मैंने ये कहा कि आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता है उधर बहता है, आप उसकी आवाज सुनते हैं किंतु ये नहीं जानते कि वो किधर से आता और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है।
ये कैसे हो सकता है?
आप इज़राइल के गुरु हैं और ये बातें भी नहीं समझते। मैं आपसे ये कहता हूं, हम जो जानते हैं वही कहते हैं, और हमने जो देखा है उसी का साक्ष्य देते हैं, किंतु आप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करते। मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करेंगे? निकोदिमुस, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वो अनंत जीवन प्राप्त करे।
गुरुवर, अपनी बातों को मुझे विस्तार से समझाइए।
ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उन्होंने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, बल्कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वो दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वो ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण ये है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता वो ज्योति से बैर करता और ज्योति के पास इसलिए नहीं जाता कि कहीं उसके कर्म प्रकट न हो जाएं, किंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के पास आता है, जिससे ये प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं।
ईसा नाज़री, हमसे आपको क्या आप हमारा नाश करने आए हैं?
सभा गृह में ये कौन चिल्ला रहा है?
स्वामी, ये आदमी अशुद्ध आत्मा के वश में है।
मैं जानता हूँ कि आप कौन है। आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं।
चुप रहो, इस मनुष्य से बाहर निकल आ।
ये क्या, ये तो कितने अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आदेश देता है और वे निकल भी जाते हैं।
ईसा ने लोगों को पश्चाताप करने की सलाह दी। वह ईश्वर के अपने नवीन राज्य के बारे में लोगों को बताना आरंभ किया। ईसा का राज्य सैनिक ताकत से आने वाला नहीं था, बल्कि ये आरंभ हुआ था उनके चमत्कारों से, चंगाई के माध्यम से। मगर कुछ अविश्वासी ईसा की शिक्षाएं सुनकर उन्हें मार डालना चाहते थे, मगर ईसा उनके बीच से निकल आए थे।